শ্রী শ্রীমদ দামোদরষ্টকম শ্রী সত্যবত মুনি সনাতন গোস্বামী এবং গুরুবর্গ, আত্মা যা শরীর মে সুপ্ত অবস্থা মে ব্রিজ কে রূপ মে অভি বিরাজমান হ্যাঁ, জব তক ভগবত রসু কা সঞ্চার নেই হতা হয় অর্থাৎ পরিবেশন নেই হতা অর্থাৎ সিঞ্চন নেই হতা হয় তব তক আত্মা কা কই উন্মেচন ইয়া বিমোচন ইয়া উন্মেষ নেই জাগ্রত নেই হতা হয় কথে শ্রবণ কীর্তন জলে করে সিঞ্চন তবে মূল লতা বাড়ি যায় গোলক বৃন্দাবন, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিত কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ, মালি হইয়া সে বীজ করে আরোপণ শ্রবণ কীর্তন জলে করে সিঞ্চন, ইয়ে আত্মাকে যদি জাগ্রত করনা হ্যাঁ তো ওর কই উপায় সে ইয়ে জাগ্রত পুষ্পিত পল্লবিত নেই হোগা, রূপ গোস্বামী প্রভু কহতে হ্যাঁ ক্লেশগ্নি সুবধা মোক্ষ লঘুতা কৃত সুদুর্লভা সান্দানন্দা কৃষ্ণা বিশ্বাত্মা কৃষ্ণ আকর্ষণী চষা কথে যদি ইয় আত্মাকে জাগ্রত করনা হ্যাঁ হ্যাঁ উনকো তো ও রাগানুগ যে রাগাত্মিক ব্রজবাসী উনকো অনুগত যে জন হ্যাঁ উনকি নিকট সে শ্রবণ আর কীর্তন জল কে দ্বারা সিঞ্চন করনা পড়েগা তো ইয় আত্মা জাগ্রত হোগা আর নেই তো ইয় আত্মা সুপ্ত অবস্থা মে পড়ে হুয়ে হ্যাঁ অনন্ত কোটি বর্ষও সে চেতন তো হ্যাঁ কিন্তু আপনা কুছ করনে কা সামর্থ্য নেই হ্যাঁ সোচতা সোচনে সে ভি কুছ কর নেই সকতে কেউকি উনকে পাশ কই সামর্থ্য নেই জল অনুরাগ্যের দ্বারা জড়িয় বস্তু হ্যাঁ প্রাপ্ত হয়ে সকতায় কিন্তু চিদ অনুরাগ কই জল মায়া মায়ের জগৎ মে কই দেওয়ালা নেই এসি ও অনুরাগী জন জব উনকে কৃপা কটাক্ষ কিছু উপর পড়েগা ও উনকে নিকট হাম শ্রবণ করেঙ্গে আর কীর্তন হাম খুদ করেঙ্গে ইয়া কই কীর্তন কর রা অনুরাগী জন হাম শ্রবণ করতে আর শ্রবণ করকে ফের পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতে কীর্তন করতে তো এই আত্মা কা উন্মেষ হোগা কেসে ক্লেশগ্নি জিতনে প্রকার কে ক্লেশ হে পঞ্চ প্রকার কে ক্লেশ হে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ হ্যাঁ লয় বিক্ষেপ কষায় রসাস্বাদ হ্যাঁ কিতনে প্রকার হ্যাঁ অনর্থ হে সব কুছ ক্লেশগ্নি সব দূর হয়ে যায়গা দু পত্তি যাব আতে হ্যাঁ চানা বো দিয়া হ্যাঁ গেহুঁ তো পৌধা উগদা হ্যাঁ তো পত্তিয়া নিকলতে হ্যাঁ তো কহতে হ্যাঁ দু তরফ সে দু পত্তে নিকলা তো ক্লেশগ্নি আর শুভদা ক্লেশ চলে যায়গা সাথে সাথে শুভ উদিত হোগা সব প্রকারকে মঙ্গল আ যায়গা কিন্তু ইতনে মে পেড় নেই বন যায়গা দু পত্তে সে ফের ক্লেশগ্নি শুভদা মোক্ষ লঘুতা কৃত জব তক মুক্তি কী ইচ্ছা হ্যাঁ খতম নেই হয়ে যায়গা তব তক আগে কুছ বড় নেই সকতা হ্যাঁ মুক্তি ব্যাঘ্রকে সমান শেরকে সমানে নিগল যাতে আগে নেই বড়নে দেঙ্গে এসে মুক্তি নেই চাই কতে ক্লেশগ্নি শুভদা মোক্ষ লঘুতাকৃত হ্যাঁ সুদুর্লভা সান্দ্রানন্দা বিশেষাত্মা কৃষ্ণাকর্ষণী চষা অফের জব হ্যাঁ ভক্তিকে লিয়ে অর্থাৎ ভগবানকে সেবাকে লিয়ে ইচ্ছা জাগ্রত হই তো স্বচ্ছরতি কই পতা নেই কিধর যায়গা সেবা তো করতে হয় কিন্তু উনকা কই সম্বন্ধ জ্ঞান নেই অর্থাৎ দাসরস কি বাত শুনে তো বহুত আচ্ছা লাগা হামে ভি রাম কি দাস বননা হনুমান কি অনুগত হোনা হ্যাঁ ইয়া ব্রজমে দাসরস মে চিত্রক পত্রক ভদ্রক রক্তক ইয়ে লোক সেবা করতে হাম ভি করেঙ্গি উনকা কই স্থির নেই বাসলে শুনা শুনা হামে ভি এসে গোপাল কো লাল লড়াঙ্গে প্যার করেঙ্গে উনকি সেবা করেঙ্গে সক্য কি বাত শুনা বড়ি বহুত আচ্ছি বাত হ্যাঁ খেলেঙ্গে কুদেঙ্গে মস্তি করেঙ্গে ভগবানকে সাথ কিন্তু উনকা स्थायी भाव नहीं है, और इसके बाद में विश्वात्मा उस समय सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नित्य मैं आपके सेवा में स्थिर हो जाऊं, स्थायी भाव के लिए सोचते हैं, किंतु अपने सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं यदि चाहूँ प्रधानमंत्री बन जाऊँ थोड़ी ना बन जाएंगे, हैं वो तो जीव जो कुछ सोचते हैं उसके द्वारा कुछ होना नहीं है। शरणागति मुख्य और मूल्यवान है। उसमें क्या होता है मालिक देखते हैं योग्यता और तो फिर अधिकार और विचार करके देते हैं। कुछ लोग जैसे मायावादी लोग सोचते हैं, जब कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो वो हम ब्रह्मास्मि कहने से ब्रह्म थोड़ी बन जाएंगे, किंतु ब्रह्म से अलग नहीं है, है तो भगवान का ही, किंतु भगवान थोड़ी बन जाएंगे, जीव जीव ही रहेगा। किंतु मुक्त होने के बाद भगवान के सेवक बन सकता है, किंतु प्रभु नहीं बनेंगे। ऐसे कोई यदि कहे कि मैं अभी ब्रजवासी बन जाऊँ या ब्रजदीप के अनुगत हो जाऊँ या सख्य रस में जाऊँ या दास्य में बात्सल्य में या मधुर रस में, कहने से नहीं होता। जब जीवों के आत्मा के उन्मेष के साथ साथ में, और गेहूँ का बीज बोया तो वो चना नहीं होगा और चना बोया तो मटर नहीं होगा, तो जीवों के जो आत्मा का अपना गठन है, स्वरूप है, ये नित्यकाल विराजमान है। ये नहीं कि मायावादी लोग जैसे कहते हैं आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, ये ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म ही बाद में ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्म ही बनेगा। ऐसे सहजिया लोग कहते हैं सखीबे कि जैसे जैसे संगति पुंसा मनिवत सतत गुण सकुलोद्धय तत्धिमान सजदान संश्रेत, जैसे संगति होगा ऐसे ही रंग चढ़ेगा। तुम यदि मधुर शास्त्री के संग में चलोगे तो तुम्हारा मधुर उदित हो जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं होता। जब धर्म में भक्तम ठाकुर जी ने दिखाया रघुनाथ दास बाबा जी महाराज के पास विजय कुमार ब्रजनाथ आ रहे हैं, किंतु एक ही कथा सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन चल रहा है, किंतु जो आत्मा है जब जागृत हुआ चेतनता प्राप्त किया और अपने नित्य स्वरूप धर्म में परिचित हो गया, चलने लगा, तब दिखाई देता है कि इनके आत्मा में कौन सा रस है। सब एक नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अनंत कोटि जीव इस जगत में है, सबका चेहरा भी एक नहीं, भजन भी एक नहीं, बोली भी एक सा स्वर नहीं, और कितना भी सृष्टि होगा कोई एक दूसरे से बराबरी नहीं कर सकता। आत्मा सब सबका अपना अपना रसों में नित्य स्थायी भाव में स्थित है, किंतु ये स्थायी भाव तक जब तक स्वरूप सिद्धि के बाद स्थायी भाव में जब तक स्थित नहीं होता तब तक वो पता नहीं पड़ेगा ये जीवात्मा कौन से रस के हैं। और उसमें भी विभिन्न प्रकार जूथ है, ग्रुप है, एक दो नहीं। सखाओं में भी प्रिय नर्म सखा सखा सुरित सखा और सखाओं में भी बहुत प्रकार भेद है। ऐसे सखियों में मंजरियों में तो ये कौन से ग्रुप में जाएंगे, किधर का है, तब ये सब स्थिर कौन करेगा। स्वयं पराशक्ति श्रीमती राधारानी के हाथ में सब जिम्मेदारी है। तो जब तक कि उस श्रवण कीर्तन जल अनुरागी जनों के नहीं सुनते हैं, न ग्रहण करते हैं, तब तक ये आत्मा जागृत नहीं होगा, उनमें से नहीं हो सकता, कभी संभव नहीं है। इसके सत्यव्रत मुनि कहते हैं इतिद्री का सलिलाभिर आनंद कुंडे, जब आनंद समुद्र में निमज्जित हो जाएंगे आप कौन सा लीला रस का पान करने के बाद में, इसके पहले आनंद चिंता करने से मिठाई खा के नहीं आनंद मिलेगा, और न गोलगप्पा खा के, और न सोने से आनंद मिलेगा और न खोने से मिलेगा। न दौलत मिलने से आनंद मिलेगा, कभी नहीं। यह आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है और उनका मांग कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। कितने उनके अंदर मांग है, इच्छाएं हैं, कौन पूरा करेगा? और इच्छा पूरा नहीं होने से दुखी रहेगा, कामना की पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। भगवान यदि कहे तुम्हारे कामनाओं का मैं पूर्ण कर दूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मांग एक से एक के बाद एक और चाहिए और चाहिए। किंतु जब ये लीला रस का आस्वादन करते हैं बस, तब तो आत्मा का उन्मेष हो जाता है, जागृत हो जाता है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर होने लग जाते हैं, सेवा में मग्न हो जाते हैं, तब उनका तमन्ना सदा के लिए मिट जाता है। कैसे? भगवत सेवा के अलावा उनके अंदर और कुछ चाहिदा नहीं है, मांग अपनी सेवा तो करना नहीं है, अपने भोग तो करना नहीं है, है? इतना फुर्सत तो नहीं है, सब समय तन्मय हो गया और सेवा में विलीन हो गया, और उनको क्या पता और स्वतंत्र व्यक्ति रहता है तो उनकी इच्छाएं होती है, जो स्वतंत्रता ही नहीं रही तो इच्छा कहाँ से आएगा है? इसलिए कहा शत्रुव्रत मुनि, ये दामोदर मास में भगवान से प्रार्थना करो, इतिद्रिक सलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम। हे प्रभु, आपके जो ये नित्य लीला रसमय है, जिस रस के द्वारा आपने पूरे ब्रजभूमि को नहीं समस्त जगत को सराबोर करके रखा है और सबको अपना करके अपना लिया, इस लीला शक्ति मुझे भी कृपा करे, मैं भी लीला को आस्वादन करके मैं अपने आत्म कल्याण कर सकूं। फिर क्या कहते हैं, इतिद्रिक सलीलाभिर आनंद कुंड स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम तदीय स्थितज्ञेषु भक्तजी तत्स्तम पुनः प्रेमस्तस्तम शतावृत्ति बंदे। मुझे और किसी प्रकार प्रेम चाहिए नहीं, जल प्रेम चाहिए नहीं और मुक्ति से प्रेम नहीं चाहिए, किसी प्रकार का और मुझे चाहिए नहीं। यहाँ तक कि कोई प्रेमी मेरे को मेरी पूजा करे, मेरा आरती उतारे, मेरा आराधना करे, मेरे को अपना गुलाम बना ले, हाँ मेरे को ऐसा प्रेम भी नहीं चाहिए, मेरा मान सम्मान करे मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? इतिद्रिक, जो ये लीला है ब्रज में गोपाल बन करके आप सदा सर्वदा ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और समस्त ब्रजवासियों को आनंद रस में उस कुंड में निमज्जित कर दिया, उनको अता पता नहीं, सुदबुद्धि नहीं, सुबह शाम नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं, एक के बाद नव नवायमान आपके लीला रस के द्वारा प्रभावित तो हो रहा है और अभिषिक्त तो हो रहे हैं। अब काल क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे कोई पता ही नहीं, किंतु उल्लास से भर जाते हैं। तो यही लीला रस, लीला शक्ति जो परिवेशन करते हैं, यही यदि जड़ जगत के जड़ व्यक्ति हैं ड्रामा करते हैं, नोटंगी करते हैं, किंतु उसके द्वारा उनका चित्तबल नहीं मिलेगा। क्यों? उनका लक्ष्य क्या है? भोगों के प्रति, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्यों? शरणागति नहीं है। किसी एक समय हरिदास ठाकुर रास्ता में नाम कीर्तन करते जा रहे थे, कोई ऐसे तो निकलते नहीं, फिर भी भक्तों से मिलने के लिए वो गमनागमन करते थे, जा रहे हैं, इतने में देखा एक सपड़िया डंक बजा करके सांप को नाचा रहे हैं, और वो क्या कीर्तन कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत के कालिया दहलीला, कालिया को भगवान ने कैसे नाथा, कालिया को ऊपर कैसे भगवान ने नृत्य किया और कालिया के समस्त जहरीली स्वभाव को कैसे बदल दिया, उसको कैसे भक्त बनाया, ये कीर्तन कर रहे हैं और लोग हजार लोग सुन रहे हैं और सब लोग दिख रहे हैं, वो सांप कैसे नाच रहा है, वो सांप के अंदर आवेश हो गया है। हरिदास ठाकुर सुन रहे थे पास में खड़े होकर, होते होते छटपट करते 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 गिर पड़े, बेहोश हो गया, लोटपोट खाने लग गए, रोने लग गए, रोमांचक अंब पुलक होने लग गया, असत्य विकार, और वो सांप जो है वो भी आकर हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, और सपड़िया जो था वो भी आकर प्रणाम किया, चरण धूल लिया, जितने लोग थे सब लोग आकर के वो हरिदास ठाकुर जी के चरण धूलि लिया, शर्माते लगाया, खुश हो गया। कभी कभी कल्पना नहीं कर सकते, सपड़िया का वो कीर्तन और नाच सबके हृदय को जीत न सके, तो हरिदास ठाकुर स्पर्श मात्र से ही कि हरिदास ठाकुर लीला स्मरण करके, लीला श्रवण करके, स्मरण में आ करके नित्य लीला में स्थित हो गए और उसके लिए उनको आविष्ट हो गया और उनके स्पर्श से सबके हृदय प्रसन्न हो गया। अब थोड़ी देर में हरिदास को चेतना आई तो उठ करके प्रणाम करके वहाँ से चल दी। अब जब सपड़िया फिर दोबारा शुरू कर दिया नाच, सांपों को नाचाना, ओ एक ब्राह्मण था वहाँ और बहुत लोग थे, वो ढोंगी वो भी कांपने लग गया, कांपते कांपते गिर पड़ा, फिर लोटपट खाने लग गया है और हा कृष्ण ये सब वृंदावन ये सब पुकारने लग गए हैं। अब सपड़िया ने क्या किया, वो डंक हाथ में ले लिया चाबुक, मारने लग गए सपंग सपंग, दो चार दस बीस मारा तो बापरे मारे दैयारे मैयारे हयारे करके भाग गए खड़े हुए। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सपड़े कैसा है, हैं इनको तो ऐसा मार डाला, इतना मारा पीटा, खून बहा दिया और हरिदास ठाकुर चरण धुली लिया है। तब से पूछा, भाई तुमने उनको क्यों मारा? बोले ढोंगी हरिदास ठाकुर का अनुकरण कर रहा है, किंतु इनको भगवान में प्रेम थोड़ी ना है, प्रतिष्ठा के लालची है, मेरे को सब सम्मान करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरा भी चरण धुली लेंगे, मैं भी बड़ा ख्याति कमाऊँगा, नाम कमाऊँगा और मैं बड़ा पूज्य बन जाऊँगा, किंतु इनके भगवान में प्रेम थोड़ी ना है, ये स्मरण कीर्तन थोड़ी कर रहे हैं, इनके स्पर्श से भी अपवित्र हो जाएगा। वो बंगाली में कहते हैं, कलयुगे ब्राह्मण जो तो है ढूंढा साप, तारे देखे जेना मारे तार है पाप। बोलते कलयुगे ब्राह्मण कैसे हैं, ये ऐसे जहरीली नाग नहीं है, जिस सांपों में जहर नहीं होता है उसको ढूंढा साप, देखने में सांप जैसे, तो देखने में तो ब्राह्मण जैसे, क्योंकि तब जब तो करता नहीं, भजन तो करता नहीं, तो उनके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं, तो उसके द्वारा हुआ क्या? तो वो जब इतना पीटा मारा ब्राह्मण को, मारने से तो बड़ा पाप लगता है, किंतु बोलते ये तो कलयुगी है, राक्षसा कलि में आश्रित जायते ब्रह्म जनिषु, हाँ वो और उल्टा सुनाने लग गए, सब लोग देखते रह गए। तो कहते हैं यदि कोई भक्त भक्ति मार्ग में चलता है, उनके प्रभाव से सौजन तक पवित्र हो जाता है, उनके हवा से गंगा के किनारे एक कोश तक कोई भी बस गया तो कुछ समय के अंदर में उसका चित्तवृत्ति अपने आप निर्मल हो जाएगा। ऐसे भक्तों के प्रभाव इतना है, सात कोष सौ जुजन तक उनका प्रभाव सबको पवित्र कर देता है। तो ये जो आत्मरस है, चिद रस है, ये और कोई दे नहीं सकता, केवल यह लीला शक्ति भगवान के जो अपराकृत लीला, जैसे राम लीला है करुण रस है। किसी एक समय महाराज जी कह रहे हैं कि रामलीला नौटंकी करते हैं, वो लोग नाटक करने लग गया, तो सब लोग गांव के देहात के सब आते सुनने, सुन रहे हैं और सुनते सुनते हैं देखा गांव के जो सरपंच था प्रधान, वो भी सभी आते हैं, हाँ उसने जूता उठाई चप्पल अधिम मारा, हाँ जो लीला कर रहे हैं, तो और ने चप्पल को शर्माते लगा ली, बोले देखो आज मेरे लीला में ऐसा अभिष्ट हो गए कि मेरे को इतना बड़ा उपहार मिला है, क्योंकि ऐसे सुंदर नाटक किया जिससे कि सबके हृदय आकर्षित हो गए। तो यदि सामर्थ्य नहीं है तो किसी के हृदय को जीत नहीं सकता है। तो ये तो जड़ जगत की बात है, किंतु अपराकृत जगत में भगवान का जो अपराकृत लीला है, इस लीला को यदि ऐसे ही निवृत्त तृष्ण निवृत्त दस्य उपगीय माना, यदि निवृत्त तृष्ण सुखदेव गोस्वामी जैसे हैं संसार से अनाशक्त अकिंचन निष्किंचन भगवत भक्तों से यदि श्रवण कीर्तन किया जाए तो आत्मा चेतनता को प्राप्त करके आत्मा जागृत हो जाएगा, आत्मा का कार्य शुरू हो जाएगा। वही रूप गोस्वामी ने इससे लिख दिया कि ये जो छह पत्ते निकल रहा है ये केवल मात्र नहीं है, मालिहिया से बीज करे आरोपण শোভন কীর্তনজলে করে সিঞ্চন তবে মূল লতা বাড়ি যায় গোলক বৃন্দাবন। কিন্তু শেখ জল পাইয়া যদি উপশাখা বাড়ি যায় স্তব্ধ হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায়। অতএব উপশাখার করে ছেদন তবে মূল লতা বাড়ি যায় গোলক বৃন্দাবন। যা ভজন করনা শুরু কিয়া না আত্মাকে চেতনতা প্রাপ্ত হুয়া। অব তো ক্যা হতা বড়না শুরু হুয়া, দোনো তরফ সে দেখতে নেই চল রা হয়। কিন্তু যদি বেল আগে বড় রা হয় লতা উপশাখা ইধার সে টেনে নিকল গিয়া ইধার সে নিকল গিয়া আর আগে ওর নিকল গিয়া তো মূল লতা যে বেল হ্যাঁ ও নেই বড় পায়েগা, এসে উপশাখা ছেদন করা পড়েগা। হ্যাঁ লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা হ্যাঁ এসবকে অন্দর যদি লালচ হয়ে গিয়া আরে উহা ও লোক 10 লাখ রুপিয়া দেন তো উহা কথা কারণে জানা হ্যাঁ উহা যজ্ঞ কারণে জানা হ্যাঁ আর উহা সব লোক গায়ত্রী মন্ত্র কা দীক্ষা দেনা হ্যাঁ। কই বলা নেই আমার ইয়া আও রাম কথা করো, আচ্ছা রাম কথা করা তো রাম মন্ত্র মে দীক্ষা দে দি। কই বলা আবি গণেশ কি পূজন হ্যাঁ গণেশ চৌথ হ্যাঁ আও আমার গণেশ পূজা করো তুমি 1 করোড় রুপিয়া মিলেগা। হ্যাঁ আরে ইয়ে তো ভগৎ সীমা মে লাগা দেনা উসমে ক্যা হ্যাঁ একদিন গণেশ কা পূজা কর লেনা। তো স্বামী প্রভুপাদ কে পাশ কৃষ্ণ প্রশ্ন কিয়া কি আপ আজ্ঞা দেঙ্গে হাম গণেশ কি পূজা করেঙ্গে সিদ্ধি দাদা গণেশে বলে যদি 1 করোড় নেই 10 করোড় ভি দে দো 100 করোড় ভি দে দো তবে হাম কৃষ্ণ কে অলাবা হাম কিছু কি পূজা নেই করতে, হাম সবকো আদর করতে সম্মান করতে দেবতা হ্যাঁ কিন্তু পূজা নেই করেঙ্গে, পূজা তো করেঙ্গে তো কৃষ্ণ কি করেঙ্গে। হ্যাঁ আর যদি কৃষ্ণ কহতে পূজা করো তবে নেই করেঙ্গে। হ্যাঁ যদি সব লোক কহে দে কি হাম উনকে অনুযায়ী বন যায় দালালি দস্তুর লে করকে তো মূল আমারা বাস ভজন স্তব্ধীভূত যায় আগে নেই বড় পায়েগা। এসে উহা বতলায়া সত্যব্রত মুনি যদি ভজন করনা হ্যাঁ হ্যাঁ তো কেসি করো ইতিদ্রিক সলীলাবীর আনন্দ কুণ্ডে সগুসং নিমজ্জন্তম আখ্যাপয়ন্তম তদীয় শীতজ্ঞেশু ভক্তর্জিত অস্তম পুনঃপ্রেমস্তম শতাবৃত্তি বন্দে। যদি ও প্রেম প্রাপ্তি করনা হ্যাঁ ভগবত প্রেম চাইয়ে আর প্রেমকে বিনা ভগবত সেবা নেই হুয়া। আপ একদিন করেঙ্গে ড্রামা দেখাবা করেঙ্গে, দু দিন করেঙ্গে বরাবর নেই কর সকতে। একদিন বহুত কথা কর দিয়া বহুত ভান্ডার কর দিয়া বহুত লোক একট্ঠা কর দিয়া হ্যাঁ ফের দুসরে দিন হ্যাঁ কাহাঁ গিয়া যাহা সে খুদাকে কসম কি কাহ পৌঁছ গিয়া একদিন আল্লাহ আল্লাহ বিসমিল্লাহ আল্লাহ আউল্লাহ কর দিয়া রসগুল্লা বিসমিল্লাহ কর দিয়া ফের দুসরে দিন নামাজ টামাজ কিছু নেই। কেউকি জব তক ভগত শক্তি নেই ভগত প্রেম নেই তো ভগত সেবা নেই কর সকতা। এসে এস লীলারসকো আস্বাদন করনে কা তাৎপর্য হে কি জব অনুরাগী জন সে হাম শ্রবণ করতে হ্যাঁ কীর্তন করতে হ্যাঁ তো উনকে শক্তি সঞ্চার হোনে কে সাথ সাথ আত্মা জাগ্রত হতা হ্যায় তো উস সময় আত্মচেতনা কে সাথ ও অব জল 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 কে অন্দর মে ও কবি সরব সামিল নেই হোগা ন উসকে অন্দর রমেগা বাস আত্মচেতনা তা আত্মা কা কার্য আত্মগতি মে চলেগা। ও ভজন করেগা উনকো কোই রোক নেই সকতা মালা মন্ত্র সে উনকো ভগবান ভক্তি কে যে অঙ্গ হ্যাঁ শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণুস্মরণম। প্রহ্লাদ মহারাজী কো উনকে বাপনে পুছা হিরণ্যকশিপু নে আরে তোর কৃষ্ণ শিখায় এসব চিজ তোর গুরুও নে শিখা বলি এ গুরু ক্যা শিখায়গা এ ষণ্ডামর্ক শুক্রাচার্য দো পুত্র এক ষণ্ডা হ্যাঁ আর অমর্ক হ্যাঁ বন্দর হ্যাঁ তো ই ক্যা শিখায়গা আমি ও ক্যা কে পতা প্রহ্লাদ মহারাজী মতীর্ণ কৃষ্ণে পরতো সতো বা মিথ অভিপদিত গৃহব্রতানাম অদান্ত গৌভীর বিশদান্ত মিশ্রম পুনঃ পুনশ্চর্বিতি চর্বনাম। ই ক্যা শিখায়গা ই উঁট যে কাঁটা খাতা হ্যাঁ খুন নিকলতা হ্যাঁ মুসে উসকো চুসতে বাহ এ কাঁটা ক্যা স্বাদিষ্ট হে আপনার মুখ ছেদ হো রা খুন নিকল রা বড়া খুশ হয়ে যাতা তে মনুষ্য ইয়ে ক্যা হামে শিখায়গা দিন রাত চর্বিতি চর্বন কর রা হ্যায় চবা হে কো চবা রা হ্যায় ফেঁক রা হ্যায় ফের উঠা করে ফের চবা রা হ্যায় হ্যাঁ বিষয় আবিষ্ট চিত্তানাম বিষয় মে আবিষ্ট হে তুই ক্যা শিখায়গা ইনকে মতি কৃষ্ণ মে নেই হ্যাঁ তো ইনকে সাথকে ইয়ে ইনকো তোমার কিছু শিখায় তুমি জোর কো প্রচ্ছন্ন শত্রু মেরা আতা ও শিখাতা হ্যাঁ ফের গুরুকে বুলায়া আরে ইসকো কোন শিখাতা কোন পড়াতা উসকো গুরুজি महाराज जी हम नहीं जानते, हम नहीं समझते किसके साथ, तो बोले जाओ अब ठीक करके और सिखाना पढ़ाना, अब सावधान रखना, चारों तरफ से पहरा देना, कोई नहीं आ जाए इनको सिखाने के लिए है। तो जब उनको गुरु लोग उनको शासन किया और बैठा दिया, देखो अब तुम दान साम दाम दंडभेद नीति ये सीखो, उधर मत देखो। तो गुरु के लोग गए पढ़ाई देकर के, जैसे गए बच्चों को बुला लिया, ए इधर आओ, क्या पढ़ना है, आओ नाम कीर्तन करो, कुमार आचार्य प्राज्ञ धर्मान भगवतानी। वो लोग बोले हम बचपन में है, बचपन में है, अभी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, फिर जब बड़े बड़े हो जाएंगे तब नाम कीर्तन करेंगे, अभी क्या करना है, नहीं अभी नहीं। बोले नहीं, तुम्हारा पता है एक दिन की पता है, 6 साल का उम्र है, 50 साल तो सोने में चला गया है, अब बुढ़ापा के 20 साल कोई काम का नहीं, तो 3 सर हो जाता है, पहले 1 सर था अब 3 सर हो गया, 2 घुटनों और 1 सर, तीनों एक हो गया, अब क्या क्या भजन करेगा, कब करेगा, बचपन में जन्म से लेके 20 साल तक तो खेलकूद में चला गया, तो 20 और 20 चला गया, 50-90 हो गया और रहेगा 10 साल। तो इसमें अपनंत कामनाएं, भोगों के कितना वृत्ति इच्छाएं हैं, तो कब करेंगे भजन, इसे नहीं, कुमार आचार्य प्रज्ञ धर्मान भगवता नहीं हो, कुमार काल से अब इससे भजन करना है। बस कीर्तन शुरू कर दी, कथा सुनाना शुरू कर दी, गुरु लोग आ गए, गुरु लोग बोले ये क्या कर रहा है, बेत लेकर के आए, मारेंगे पिटेंगे, कि तो आत्मचेतना आत्मा का रस प्रभावित हो रहा है, और गुरु लोग बदल गए, गुरु लोग वो भी नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए, वो हिरण्यकश्यप को खबर गया, अरे वो गुरुपुत्र जो है संडामर का वो भी कीर्तन कर रहा है, प्रहलाद भी कीर्तन कर रहा है, सारे असुर बालक भी कीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने भेज दिया मार मार करके, सब असुर लोग आ गए, किंतु क्या कर लेगा, असुर लोग पत्थर मार रहे हैं, तलवार चला रहा है, बंदूक चला रहा है, मानो गोली चला रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, माया में सब कुछ उड़ रहा है, प्रहलाद तक पहुँचना है, किसी को स्पर्श करेगा, इससे आत्मचेतना के बाद में वो किसी की परवाह करते नहीं, काहे को डरे है? उनको भय सुख मोह अपहा, उनके तस्मिन मुखरित मधुविश चरित्र, यदि ऐसे अनुरागी भक्तों के मुख से यदि भगवान की कथा सुनने को मिले ना, तो क्या कहते, तस्मिन मन मुखरित मधुविश चरित्र विशेष चरित्र परित सेवंती, यदि वो प्रवाह स्रोत प्रवाह चल रहा है, तो आपका भय शोक मोह भूख प्यास सब खत्म कर देगा, और रस पान करके मत वाला हो जाएगा, डरेगा क्यों, इसे सत्यव्रत मुनि कहते हैं जीवन में यही साधन करो, भगवान से प्रार्थना करो, कहाँ ये हरिरस मिलेगा, हरिरस मदिरा मदादि मत्ता, कहाँ ये हरिरस मिलेगा है? वो गोपियाँ कहती है यदि सब जगत को हम बेच दें किंतु कहीं हरिरस मिले, हम सब नोछार कर देंगे। तो वो कहते हैं गोपियाँ, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूभि गृहती बुरीदा जना। चैतन्य महाप्रभु कवि राजदर्शन बीज भक्षण, माना किया राजा का दर्शन नहीं करना, विषय का दर्शन नहीं करना है, अस्पर्श नहीं करना है, हैं उनके दिए हुए वस्तु ग्रहण नहीं करना है। अब महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु बलगंडी उद्यान में रजता के समय जगन्नाथ जी का उपलब्ध हो रहा है, और पेड़ के नीचे सर दे करके स्मरण कर रहे हैं, महाराज प्रताप रुद्र साधारण कपड़ा पहन करके बस ये कीर्तन करते हुए गोपी गीतों का आ रहे हैं, आकर के महाप्रभु जी के निकट बैठ कर महाप्रभु पाद सम्मान कर रहे हैं और उनको सुना रहे हैं कि मंगल के मंगलम मंगलानाम, सब मंगलों के मंगल स्वरूप क्या है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जीवन जो उत्तप्त हो चुका है इसको यदि शांत करना है तो केवल मात्र है तब कथामृतम श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही ये मंगल होगा, मंगल के भी मंगल स्वरूप है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि यहाँ कहते हैं यदि ऐसे यदि कोई व्यक्ति भगवत कथा कीर्तन करे, अनुरागी हैं, तो भगवान से ये प्रार्थना करो ये रसों को हम सदा पान करते रहें, और कुछ चाहिए नहीं। ये रसों के द्वारा आत्मा सुष्ट पुष्ट एवं भगवत सेवा में सब समय तन्मय होकर के तल्लीन होकर के और जुगजुक्त होकर रह सकता है। और नहीं तो और रस में क्या होगा, कहीं कुछ मिला इसके बाद में हम कहीं और भाग गए, क्यों और कुछ चाहिए। किंतु ये रस को प्राण करने के बाद में और कोई तमन्ना रहेगा नहीं, इच्छाएँ रहेंगे नहीं और कुछ मांग रहेगा ही नहीं। इससे सत्यव्रत मुनि यहाँ पर इस श्लोकों के द्वारा सबको चेतना दे, चेतना होश दिला रहे कि देखो और कुछ चाहिए नहीं। अब चौथा श्लोक में फिर कहते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्ष बधिम वा न चैन्यम वृण्यहम वर्षादपि हो इदंते बपुर्णात गोपाल बालम सदैव मनुष्य अविरस्तम कि मुन्नि। हे देव, आप दिव्य हैं, अलौकिक है, अप्राकृत है, आप वर देने में सामर्थ्यवान है। कोई भी आया ना पूछेंगे क्या चाहिए भाई, कुछ ले लो, क्योंकि भुक्ति मुक्ति या दिया जान पलाइया कृष्ण भक्ति नादेन राखेन लुकैया। भगवान भुक्ति मुक्ति देके भगा देते हैं, देंगे नहीं भक्ति, इतना आसान नहीं है। ले ले, चाहिए ना कुछ। एक अंधा आया, लंगड़ा, अंधा भी है लंगड़ा भी है, तो आया शिव ठाकुर के पास। बोले शिव ठाकुर भोलेनाथ आशुतोष, सबको सब कुछ देते हैं तो मेरे को कुछ दे दो, मैं तो गरीब हूँ, दुखी हूँ, लंगड़ा हूँ, अंधा हूँ, तो मैं आपके शरण में आया। पहले बहुत गलती की, कर्म का फल से तो भोग रहा हूँ, अब हमें उद्धार करो। तो शिव ठाकुर बोलते हैं क्या चाहिए, किंतु एक एक शर्त है मेरा। तो क्या? बोले एक ही बर दूंगा, दो चार नहीं दूंगा, एक ही मांग लेना और ज़्यादा नहीं दूंगा। शिव ठाकुर बोले एक ही मांगेगा तो आँख मांग लेगा, नहीं तो पैर मांग लेगा, नहीं तो कुछ और क्या मांगेगा। तो ठीक है, ऐसा ही हो, मैं एक ही मांगूंगा कि मैं अपने आँखों से अपने नाती को गोदी में लेकर के और उनको सोने के थाली में दूध भात खिला सकूं। तो अभी शादी भी नहीं हुआ तो बेटा कहाँ से आएगा, फिर नाती कहाँ से आएगा, और सोने के थाली कहाँ से आएगा। धन दौलत नहीं होगा तो, आँख नहीं हुआ तो देखेगा कैसे, पैर नहीं हुआ तो चलेगा कैसे। तो उसने एक बार में सब कुछ मांग लिया। शिव जी बोले तू तो बड़ा चालाक है भाई, अपने नाती भी मांग लिया, सोने के थाली भी मांग लिया, और पैर भी मांग लिया, आँख भी मांग लिया, सब कुछ तूने मांग ली। तो यहाँ का कहते हैं सत्यव्रत मुनि, भगवान का ठगना नहीं और ठगने जाना नहीं, अपने ठग जाओगे। वरंग देव, हे देव, आप वर देने में बड़ा चतुर है, बहुत वर दे सकते, जो इच्छा सो दे सकते, हमें चाहिए नहीं। क्यों? मोक्षम न मोक्ष अवधिम्बा, पांच प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य। भगवान के समान रूप चाहिए, तो वैकुंठ में सबका रूप चतुर्भुज है, कोई भी जाओ चारा तो वाले हो जाएंगे, भगवान के समान हो जाएंगे। ये सालोक्य सारूप्य मुक्ति, सालोक्य भगवान के समान लोक, वैकुंठ जैसे ध्रुवलोक मिल गया ध्रुव को, ऐसे असर्ज भगवान के समान, और सालोक्य सारूप्य शास्त्री साधु जो भगवान के मिल जाना, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो ये सब मुक्ति हमें नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष अवधि, इसके बाद में यदि कुछ और है आश्चर्य वैकुंठ वो भी नहीं चाहिए। नौचैन्यम वृण्यहम वर्षादपि हो, मेरे अंदर कुछ भी अन्न चो और कुछ यदि आप देना चाहते हैं तो हमें चाहिए नहीं। किंतु क्या चाहिए, तब कहते हैं इदंते बपुरनाथ, हे नाथ, जब तक मैं इस शरीर में हूँ तब तक तो मैं बंधन में हूँ, और सूक्ष्म शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर बंधे हुए मैं हूँ। किंतु मैं चाहता हूँ मेरा आत्मा के शरीर से मैं चिरकाल आपके जो गोपाल स्वरूप है इनका दर्शन करूं मतलब मैं इनके सेवा में नौछावर कर दूँ अपने को, और हमारे अंदर कोई भी तमन्ना नहीं है। और क्या अन्यंच, यदि आप कुछ और देना चाहते हैं तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए श्रवण कीर्तनादि भक्ति, भक्ति के अंग आपके लीलाकथा का श्रवण करूँ, उसी की कीर्तन करूँ, और नित्यकाल आपके गोपाल स्वरूप का दर्शन करूँ, और मैं उस आपके सेवा में अपने को नोचा और कर सकूँ। इससे मेरे को धर्मार्थ कामोक्ष पुरुषार्थ तो चाहिए नहीं, और मोक्ष की चरम सीमा में जो वैकुंठ है वो भी नहीं चाहिए, किंतु हमें यदि वरदान देने में सामर्थ्य है तो आपसे ये मांगता हूँ, मुझे ये दे दो नवदा भक्ति। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में आए तो उन्होंने सब धाम, जैसे वृंदावन है द्वादश भवन द्वादश भवन, तो महाप्रभु जी बोले मैं जब आ रहा हूँ तब जीवों को जब तक भक्ति के पास भक्तिदेवी के पास शरणागत नहीं होता है, भक्ति अंग पालन नहीं करने की सामर्थ्य नहीं रहता है, तो जीव दुर्दशा प्राप्त करता है। भक्ति के अंगों को पालन करे इसके लिए मैं जा रहा हूँ, तो भक्ति देवी को लेके चलता हूँ। मुक्ति को लेके नहीं आया महाप्रभु, भक्ति देवी को लेके आया, और नवदा भक्ति के लिए नवदा भक्ति पीठस्थान लेके आया है। नवद्वीप धाम नवदा भक्ति पीठस्थान, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नौ दीप को एक नौ स्थान लेके आए। तो महाप्रभु क्या करते थे, नवद्वीप धाम में भ्रमण करते भक्तों को लेके, जैसे कृष्णा द्वादश वन में जाते द्वादश रस देने के लिए, ऐसे महाप्रभु भक्तों को लेके, सब व्यक्तियों को लेके, पढ़ुआ छात्र जो आता सबको लेके नवदा भक्ति स्थान में भ्रमण करते। कोई श्रवण आख्य भक्ति स्थान, कोई कीर्तनाख्य भक्ति का स्थान है। तो महाप्रभु नवद्वीपों में जाके भक्ति के साथ जोगयुक्त कर देते और प्रार्थना करते, कैसे तुम लोग भक्ति प्राप्त करो, भक्ति अंग पालन कैसे करोगे। ऐसे गुरुवर्ग आज भी क्या करते हैं, जो नवद्वीप परिक्रमा होता है सबको लेके क्यों जाते हैं, कि तुम चेष्टा करने से भक्ति के अंग पालन नहीं कर सकते, प्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। खूब चेष्टा कर, रोज कथा सुनूंगा, दो दिन बाद मन उचड़ जाता है, काम लग जाता है, इच्छाएँ नहीं होती है, नींद आ जाती है, थकान हो जाता है, तो हम भक्ति श्रवण नहीं कर सकते हैं। सात दिन सात रात परीक्षित महाराज की सभा में बैठ गए सब लोग, किंतु हमें एक दिन एक घंटा से ज़्यादा ऊपर हो जाए ना, शरीर दुखने लग जाता है, मन दुखने लग जाता है, कब भागे, कब समाप्त हो, कब चले यहाँ से, छुट्टी मिले, छुटकारा मिले, शांति मिले, किंतु उस श्रवण में रुचि नहीं है। ऐसे ही कीर्तन स्मरण वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो महाप्रभु जी ने ये नवद्वीप धाम में भक्ति के अंगों को ला करके स्थापित कर दिया। बोले कैसे पहुंच जाए, प्रार्थना करे तो उनको सदा सर्वदा कृपा करेंगे। तो कृपा करने के बाद ही, भक्ति का अंग पालन करने के बाद ही शक्ति आएगा और भगवान के सेवा के लिए तो रुचि जागृत होगा। तो इससे ग्रंथकार कहते हैं श्वेतव्रत मुनि कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कर वर देने में समर्थमान है, मेरे को नवदा भक्ति के अंगों को पालन करने के लिए मुझे प्रवृत्ति दो। हे नाथ, आपके बाल गोपाल स्वरूप हृदय में नित्यकाल विराजमान हुए, आज यदि भक्ति भी नहीं है तो भगवान को विराजमान करने के बाद में क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे लोग क्या करते हैं, बाजार से सुंदर मूर्ति लाता है, मंदिर आश्रम बना लेता है, किंतु कभी न वहाँ कोई उत्सव है, न कीर्तन है, न कुछ है, जैसे कि एक बंगलो बनाया या पार्क बनाया, ऐसे घर के अंदर में भी एक स्टैचू लाकर खड़ा कर दिया, हाँ बाप दादा का स्मृति है, याददाश्त है, किंतु सेवा पूजा नहीं है। कोई यदि रख भी दे, ब्राह्मण को आया टुंग टंग करा, ठिंग ठिंग करके एक केला काट के सात टुकड़ा भोग लगा दिए, बाता से रख दिए, चल दिया है, बड़े बड़े त्यौहार आया, लोगों से कलेक्शन किया, निमंत्रण दिया, एक दिन भंडार कर दिया, फिर मंदिर के दरवाजे बंद। तो वो भगवत सेवा है या भगवान के साथ में धोखाधड़ी करना है, बिजनेस शुरू करना है। तो इसलिए कहते हमें चाहिए नहीं, हमें आप हमारा हृदय में आओ और सदा सर्वदा भक्ति के अंगों को पालन कर सकूं और अब काल सुनेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, परिक्रमा जाना है। हरि बोल। गौर प्रमाण देव।